नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मीका नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और राज्य। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से मीका नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर का दास मीका इसराइलियों के विरोध में उनके अगुओं को सचेत कर रहा है और उनके प्रति भविष्यवाणी कर रहा है कि वे किस प्रकार अपने जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि वे बुराइयों से प्रीति रखते हैं और भलाई से बैर। मित्रों, हम देख रहे हैं कि मीका नबी की पुस्तक में मीका इसराइल के अगुओं की भर्त्सना करके कहता है कि वे भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हैं और गरीबों का न्याय बिगाड़ते हैं। उनका व्यवहार आम जनता के साथ ऐसा था जैसा कि वे मानो उनकी खाल उधेड़ते वरन उनकी हड्डियों से मांस नोच लेते हों। वे नरभक्षियों के समान हो गए थे, वे बहुत कठोर हो गए थे। इस कारण जब अशुर जाति उनके साथ निर्दयता का व्यवहार करेंगे तब वे परमेश्वर को पुकारेंगे, परंतु परमेश्वर उनकी पुकार नहीं सुनेगा, वह उनसे मुंह मोड़ लेगा। उनके झूठे भविष्यवक्ताओं का सूर्य अस्त हो जाएगा, दिन ही के समय उन पर अंधियारा छा जाएगा, अर्थात विपत्ति उन पर आ पड़ेगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए मीका नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ें। 3 अध्याय के 6 पद में लिखा है, इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह पाओगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। लिखा है कि इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी। भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में हमने देखा है कि रात आने का अर्थ है दंड। जी हां, यहां दंड के 2 अभिप्राय हैं, अपराधी को परमेश्वर के हस्तक्षेप द्वारा दंड और दूसरा परमेश्वर द्वारा प्रकाशन न देने का समय। कहता है तुमको दर्शन न मिलेगा। जब वे दंड पाएंगे तब परमेश्वर उन पर सत्य का प्रकाशन नहीं करेगा। तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे, उन्हें परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया जाएगा, कोई भविष्यवाणी नहीं करेगा, किसी भी प्रकार से कोई वार्तालाप नहीं होगा। 1 कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय उसके 8 पद में पौलुस कहता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी। भविष्यवाणियां 2 प्रकार से समाप्त होंगी। पहला, वे पूरी हो जाएंगे, जो भी भविष्यवाणी की गई है वे पूरी होंगी। दूसरा, परमेश्वर नई बात नहीं बताएगा। मेरे प्रियो, नए नियम और पुराने नियम के मध्य परमेश्वर 400 वर्ष तक चुपचाप रहा, शांत रहा। किसी भी रीति से उसने परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ संबंध नहीं रखा, कोई वार्तालाप नहीं हुई, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं रहा। सूर्यास्त हो गया था, परंतु अंतिम भविष्यद्वक्ता मलाकी ने भविष्यवाणी की थी कि फिर से सूर्योदय होगा। मलाकी नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। मलाकी सूर्योदय की चर्चा नहीं करता, यदि रात सामने ना होती और रात आई। इसराइल 400 वर्ष की रात में चला गया, जब तक कि प्रभु यीशु का आगमन नहीं हुआ। मीका भी यही दृश्य प्रस्तुत करता है कि किसी भी रीति से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई आदान प्रदान, कोई बातचीत नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, आज अनेक देशों में शैतान की पूजा हो रही है, लोग उसकी आराधना कर रहे हैं, और परमेश्वर की, जिसने इस पृथ्वी को, संसार को बनाया है, उसको नहीं। परमेश्वर के प्रकाशन का सूर्यास्त हो रहा है, अर्थात परमेश्वर के वचन का प्रकाशन कम होता जा रहा है। यदि आप किसी से कहें कि आज परमेश्वर का एक दास वचन देने के लिए इस नगर में आ रहा है, तो लोग वहां बहुत कम संख्या में होंगे। परंतु यदि कोई फिल्म का कोई एक हीरो आ रहा है, तो हजारों की संख्या में होंगे। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन प्रदान करने वाले केंद्र अब प्रकाशन नहीं दे रहे हैं। सच तो यह है कि वे परमेश्वर को त्याग कर शैतान की पूजा कर रहे हैं। मीका यही कह रहा है, कहता है, इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन ना मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी ना कह सकोगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। मेरे प्रियो, क्या ही दुखद बात है कि ऐसे कठिन समय उनके जीवन में आने वाले थे। मीका नबी की पुस्तक 3 अध्याय के 7 पद में लिखा है, दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सब के सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। मीका के कहने का अर्थ है कि ऐसा अंधकार छा जाएगा कि झूठे भविष्यद्वक्ता अपने आप को मूर्ख बनाएंगे, क्योंकि उनकी भविष्यद्वाणियां पूरी नहीं होंगी। आहाब के साथ ऐसा ही हुआ था, परंतु देरी हो चुकी थी। झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने उससे युद्ध विजय की भविष्यद्वाणी की थी, जबकि मीकायाह ने कहा कि वह युद्ध में मारा जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, 1 राजा की पुस्तक 22 अध्याय उसके 1 से 28 पद में। 1 राजा की पुस्तक 1 से 28 पद में यहां पर मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ना चाहूंगा। 1 राजा 22 अध्याय के 1 पद से इस प्रकार से लिखा है, 3 वर्ष तक अरामी और इसराइली बिना युद्ध के रहे। 3रे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इसराइल के राजा के पास गया। तब इसराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तुम मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इसराइल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा ही मैं भी हूं, जैसे तेरी प्रजा है वैसे ही मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े वैसे ही मेरे भी घोड़े। फिर यहोशापात ने इसराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इसराइल के राजा ने नबियों को जो कोई 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहां यहोवा का और कोई भी नबी नहीं जिससे हम पूछ लें? इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हां, इमला का पुत्र मिकायाह एक पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने राजा से कहा। तब इसराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, इमला के पुत्र मिकायाह को फुर्ती से ले आओ। इसराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सब भविष्यद्वक्ता उनके सम्मुख भविष्यद्वाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिद्दिक्याह ने लोहे के सिंह बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। जो दूत मिकायाह को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। जब वह राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकायाह, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिकायाह ने कहा, मुझे समस्त इसराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। तब इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? मिकायाह ने कहा, इस कारण तू यहोवा का वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि मिकायाह परमेश्वर का वचन लेकर के सत्य वचन उन तक पहुंचाता है। परमेश्वर का जन सच कहता है। कलीसिया के पाप छिपाने से कोई लाभ नहीं है। धर्मगुरु संदिग्ध आचरण रखते हैं और मसीही विश्वास का स्वांग रचने वाले समृद्ध हो रहे हैं। हमें इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 6 पद को बार बार पढ़ना है, क्योंकि वहां कहा गया है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे अपना पुत्र कहता है या बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि वह नहीं चाहता कि हम अवैध संतान हो। वह चाहता है कि संसार जान ले कि हम उसकी सच्ची संतान है। विजेता विलियम ने अपने हस्ताक्षर में लिखा है, विलियम अवैध संतान, क्योंकि वह अवैध संतान था। मेरे विचार में अधिकांश कलीसियाई सदस्य ऐसा ही हस्ताक्षर कर सकते हैं। सहायक पादरी, संडे स्कूल शिक्षक, कलीसियाई अगुए आदि सब ऐसा ही हस्ताक्षर कर सकते हैं। आपको स्वयं यह बोध होगा कि आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं, आपका नया जन्म नहीं हुआ है, आप प्रभु यीशु को यथार्थ में अपना उद्धारकर्ता नहीं जानते हैं। आप उससे प्रेम नहीं करते हैं, आप उसकी सेवा के इच्छुक नहीं हैं, आप उसके वचन के प्रेमी भी नहीं हैं। मेरे मित्रों, मीका के युग में भविष्यद्वक्ता ऐसा ही करते थे, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने में पढ़ा कि झूठे भविष्यद्वक्ता राजा को प्रसन्न करने के लिए राजा की बातें कह रहे थे ताकि वह युद्ध के लिए जाए, परंतु मीकाया भविष्यद्वक्ता ने उसे बताया कि वह मृत्यु को प्राप्त करेगा। इससे राजा प्रसन्न नहीं हुआ। और यहां पर हम देख रहे हैं कि भविष्यद्वक्ता ऐसा ही करते थे मीका के समय में, वे मुंह देखकर प्रचार करते थे और श्रोता उन्हें सराहते थे, ओह तुम कैसे महान प्रचारक हो, आप कैसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। वे सुख सुविधा में रहते थे, परंतु उनकी नैतिकता का स्तर बहुत ही गिरा हुआ था। अब ध्यान दीजिए कि मीका अपने आप को उनसे अलग रखने में अति सावधान है। मीका की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं कि मैं याकूब को उसका अपराध और इसराइल को उसका पाप जता सकूं। चुभने वाला प्रचारक होने के लिए बहुत साहस चाहिए कि आप मनुष्य को वह कह पाए जिसे वह सुनना नहीं चाहता है। मीका यहां पर स्पष्ट कहता था, मैं जानता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे कहने पर प्रेरित करता है। मेरे मित्रों, इस योग्य होना अत्यधिक सौभाग्य की बात है कि आप परमेश्वर के वचन को सत्यता के साथ लोगों के सामने रख सकते हैं, और यह सब कुछ तभी होगा जब आप नया जन्म का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। आगे हम देखते हैं यरूशलेम के अगुओं के पाप। इस अंतिम भाग में मीका विशेष करके यरूशलेम को संबोधित करता है। उसने इससे पहले भी यरूशलेम के विषय में कहा है, परंतु अब वह दक्षिणी राज्य के भविष्यद्वक्ताओं, प्रधानों और याजकों को लक्ष्य बनाता है और उन पर परमेश्वर के दंड की घोषणा करता है। आइए हम पढ़ते हैं मीका नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9 पद। 3 अध्याय के 9 पद में लिखा है, हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इसराइल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो। मेरे प्रियो, वह कहता है सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, और वह उनके पापों की सूची सुनाता है। मीका नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 10 और 11 पद में हम आगे देखते हैं, तुम सियोन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यद्वक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। ध्यान दीजिए, कहता है उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते थे और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यद्वक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं। इन सब में एक समानता थी और वह है लालच, लोभ। मेरे मित्रों, यह सबसे भयानक मूर्ति पूजा है। आज मूर्तियां तो नहीं है, परंतु अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है। मीका के युग के समान मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु लालच तो आज भी वैसा ही है जो उस समय था। मीका इसराइल के पाप पर ध्यान आकर्षित करता है। वे लालच के दास थे। प्रधान हो या भविष्यद्वक्ता या याजक, सब धन के लालची थे, सब पैसों के पीछे भाग रहे थे। वे न तो परमेश्वर को स्थान देते थे और न ही मानवता को। वे पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था। वे सब कुछ कुचल देना चाहते थे। अतः आश्चर्य की बात नहीं कि कहा जाए वे धन की लालसा के कारण नरभक्षी हो गए थे। मेरे प्रियो, हमारे लिए मीका का संदेश यही है कि नागरिक और धर्म दोनों के अगुए जब भ्रष्ट हो जाएं, तो वह सरकार कभी भी सफल नहीं होगी। अगुए और सरकार भ्रष्ट हो जाएं, तो कोई भी सफल नहीं होगी। मेरे प्रियो, मीका नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 12 पद में, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, लिखा हुआ है, इसलिए तुम्हारे कारण सियोन जोतकर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। यह भविष्यवाणी है कि यरूशलेम के पापों के कारण वह पूरी तरह उजड़ जाएगा। यर्मिया नबी की पुस्तक 26 अध्याय उसके 18 पद में यर्मिया भी मीका का संदर्भ देता है, जो उसकी भविष्यवाणी की पुष्टि करता है। राजा नबूकदनेस्सर की सेना ने यरूशलेम की ऐसी ही दुर्दशा की थी। नहेमिया की पुस्तक के 1 अध्याय में नहेमिया जब यरूशलेम लौटा था, तब वहां मलवा, राख और खंडहर ही थे। नगर का पुनः निर्माण करना असंभव सा लग रहा था। यहूदियों की एक और पुस्तक तालमूद में वर्णन किया गया है कि सन 70 में जब रोमी सेना यरूशलेम में आई थी, तब उसकी सेना अर्थात उसके सेना अधिकारी रूफुस ने हल के फाल से मंदिर की नींव खोदी थी। इस तथ्य को यहूदी इतिहासकार जेरोम भी स्वीकार करता था। मेरा अपना विचार भी यही है कि यह परंपरा सही है, क्योंकि नबूकदनेस्सर और रोमी सेनापति तीतुस ऐसा करने में अचूक थे। अब चाहे परंपरा के अनुसार कही गई कहानी सच हो या ना हो, यरूशलेम में मीका की भविष्यवाणी की पूर्ति के चिन्ह आज भी प्रकट हैं। मेरे मित्रों, जिस नगर से परमेश्वर प्रेम करता था, उसने अपने लोगों को चुना, उस स्थान पर रखा, परंतु उन्होंने ही उसे त्याग दिया। परमेश्वर उन्हें बार बार अवसर देता रहा, आखिर वे नहीं माने। वे पैसे के लालची हो गए और बुराइयों पर बुराई करते चले गए। आज हम जब अपने नजर को संसार की ओर उठा करके देखते हैं, तो हम पाते हैं कि आज हम भी उन्हीं के जैसे हैं। एक भाई दूसरे भाई को मार डालना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि उसे संपत्ति चाहिए, उसे धन चाहिए। पत्नी को पति मार डालता है और एक पिता बेटे को मारता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में परमेश्वर का डर नहीं है, हमारे अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है, और ये दुष्टता प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है। मैं नहीं जानता कि इस समय आपके परिवार में आपका जीवन कैसा है, आपके परिवार के लोगों का जीवन कैसा है, परंतु परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह यरूशलेम को नष्ट करेगा। और हमने देखा कि राजा नबूकदनेस्सर के समय में यरूशलेम को नष्ट कर दिया गया। हमारे जीवन के लिए एक अवसर है, एक मौका है कि हम अपने जीवन को नष्ट होने से बचाएं। यरूशलेम को फिर से बनाया गया, शहरपनाह बनाई गई, परंतु हमारा जीवन एक बार गिर गया तो हम उसे नहीं बना पाएंगे। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं, अपने जीवन के उन गलतियों को, उन अपराधों को, उन पापों को जिसे हमने जानते हुए और अनजाने में परमेश्वर के विरोध में, परिवार के विरोध में, लोगों के विरोध में किया है, उसे उसके सामने में मान लें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब वे पुकारेंगे तो मैं उनकी नहीं सुनूंगा। यदि आप कठोर बने रहेंगे तो वह निश्चय ही नहीं सुनेगा, परंतु जब आप नम्र होकर, दीन होकर प्रभु की निकटता में आएंगे तो वह आपकी आवाज सुनेगा, आपको फिर से एक बार नया मन और हृदय देगा, ताकि आप अपने जीवन में उस महान शांति को पाएं जिसे वह आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में एक अद्भुत आशीष को प्राप्त किया है। आप अपने जीवन में एक सही निर्णय लें, परमेश्वर से प्रेम करें, बुराइयों से दूर हटें, क्योंकि परमेश्वर बुराई से घृणा करता है। वह चाहता है कि हर एक इंसान उससे प्रेम करे और बचाया जाए, उद्धार पाए, शांति पाए। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। You.
तो